इसमें दूसरा जो अंग है वो निकांक्ष। किसकी कांक्षा करनी चाहिए? मोक्ष की तो कम से कम करनी चाहिए ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए तो संसार चाहिए। कांक्षा, तृष्णा और भावना अलग बात है। कोई संयोगों की मुझे तृष्णा नहीं है, अपने स्वभाव की मुझे भावना है। अपने हित की क्या होती है? भावना होती है। और संयोगों की क्या होती है? तृष्णा होती है। तब मुझे अपना पूर्ण तत्व विकल्प के काल में ऐसी भावना रहती है, यथार्थ में तो मैं ही पूर्ण मोक्ष स्वरूप तत्व हूं। तो तत्व मोक्ष स्वरूप हूं तो चाहना क्या, न हो तो चाहना इच्छा होवे, लेकिन मैं ही स्वयं कैसा हूं? परिपूर्ण। लेकिन उनको भूलकर हम बाह्य के विषयों में मुझे कुछ न कुछ हर समय कुछ न कुछ मुझे चाहिए, ऐसी इच्छा कांक्षा ममता रहती है, क्योंकि अपना परिपूर्ण तत्व का विश्वास नहीं है। और जहां विश्वास नहीं है वहां प्रयत्न नहीं होगा। डाउटफुल जब भी कहीं भी हो गए तो क्या हो गया, हम प्रयत्न नहीं करेंगे। तो यहां मुझे बाहर का कुछ भी चाहिए ऐसे मानने वाला क्या है? भिखारी है। भिखारी होते ऐसे पर चाहिए तो सही है ना, मेरे में नहीं है, कमी है तो चाहिए ना कोई। यदि मेरे में कमी होती तो मेरे आश्रय से कभी भी पूर्णता होगी ही नहीं है। मैं स्वयं अपूर्ण तत्व हो तो उसके आश्रय से पूर्णता कैसे प्रकट होगी? इसलिए तो बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में लिख, सभी जीव कैसे है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा। जिस शब्दों को श्रीमद जी ने सर्व जीव छे सिद्ध सम, एक बहुत अच्छी दो बात उसमें बताई। सभी जीव, सभी जीव लेके माने पर्याय अपेक्षा से आप निगोद से लेकर सिद्ध भगवान का सभी ले लो, गुणस्थान वाले ले लो, जीवस्थान वाले, मार्गणा स्थान वाले, संगनी असंगनी त्रस थावर जो भी लेना ले लो। मूलभूत उनके सामर्थ्य से द्रव्य स्वभाव से कैसे है? सर्व जीव से ये स्वभाव की बात की, लेकिन उस प्राप्ति की विधि करनी पड़े। जे समझे ते था, यदि उनका हम यथार्थ रूप से स्वीकार करेंगे, ये उस तत्व को हमारे श्रद्धा ज्ञान में लेंगे तो ही सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। सिद्ध स्वभाव है लेकिन प्रकट करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्वभाव है इसलिए मुझे प्राप्त हो जाएगा, स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति का पुरुषार्थ है। तो यहां कहते ये मानने वाला भिखारी है, और उसके सामने ऑपोजिट में मुझे मेरा एक आत्मा ही चाहिए, और सभी विकल्पों को छोड़ के मुझे क्या चाहिए? पर किसी को लगे आत्मा तो है इसमें, फिर क्या चाहिए? ऐसे क्यों नहीं चाहिए ना, आत्मा की है ना। अरे आत्मा है लेकिन उसको तुझे स्वीकार कहां हुआ है? यहां कहते आत्मा ही चाहिए माने उसका ही मुझे अनुभव चाहिए, उनका ही श्रद्धान विश्वास ज्ञान और उसमें ही रमणता मुझे चाहिए, और अस्थि में और नास्ति में दूसरा कुछ ही नहीं चाहिए, कुछ भी अंश मात्र भी परद्रव्य की चाहना हमें सच्चे सुख के वेदन से वंचित कराएगा। अंश मात्र भी परद्रव्य की चाहना हमारी अंतर्मुक्ता में बाधक है, और अंतर्मुक्ता हुए बिना कभी भी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होने वाला नहीं। इतनी तो उपेक्षा करनी पड़ेगी कि मुझे जगत में कोई अधिकता नहीं लगती और अपने स्वभाव में कहीं कमी नहीं लगती। अपने स्वभाव में कमी लगेगी तो कहीं हम ढूंढने को जाए, लेकिन मेरे में एक परिपूर्ण तत्व में पूज्य गुरुदेव जी इसके लिए एक भजन की कड़ी गाते थे, गुजराती में है ऐसे तो, प्रभु मेरे तू सब बाते पूरा, पर की आस कहां करे प्रीतम, एक किन बाते अधूरा। प्रभु मेरे बहुत जैसे कहें ना मिठास से प्रेम से हमें पुकार के, तू कैसा प्रभु मेरे तू सब बासे, बासे माने तुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, श्रद्धा चारी क्या चाहिए, वो सबसे तू कैसा है पूरा है। हमें आखिर में समझिए कोई भी इंद्रिय विषय जुटाने के बाद भी आखिर में क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए। और यदि विषयों में सुख होता तो हमारा जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, सिद्ध भगवान है, उनके पास कितने परिग्रह होंगे, तो वो दुखी होंगे। और जिसके पास बहुत है ये स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव सुखी होना चाहिए। जगत में ऐसा कौन सा बाह्य परिग्रह जो भूतकाल में हमें आनंद बार न मिला हो। परिग्रह से कभी किसी को भी सुख शांति मिलती नहीं है तो कौन सा आकुलता रहती, कौन सी आकुलता, प्राप्ति के माने जुटाने की आकुलता रहती, मिलने पर क्या होता है भोगने की, उसको संभाल के रखने की, कोई न ले जाए, चोरी करके न ले जाए, इसकी आकुलता। तो सद्भाव हो या अभाव हो आकुलता तो बनी रहती है, तो हमें क्या मिला, अंत में क्या मिला हमारा, आकुलता के बिना कुछ मिलता ही नहीं। एक अतीन्द्रिय महापदार्थ में हूं, इसके आश्रय में वन जंगल में शेर आदि हो, लेकिन उसके सामने भी मुनिराज को प्रणति की इतनी स्थिरता, स्वभाव में एकाग्रता क्यों बनी रहती है। उन्होंने अपने स्वभाव में क्या दिखा है कि ऐसे प्रतिकूलता के उपसर्ग के समय में भी वो अपनी प्रणति स्वभाव में जम जाती है। ऐसा मैं एक चैतन्य तत्व हूं, उसका मुझे प्राप्ति हो, इसके अलावा बाह्य के कोई भी पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। संयोगों से सुख नहीं है, स्वभाव के आश्रय से सुख है। ऐसा क्यों है, संयोगों से क्यों नहीं है, जिसका वेदन नहीं है उससे सुख कैसे होगा। कोई भी परद्रव्य का तो वेदन किसी को, चाहे सो अज्ञानी हो चाहे सो ज्ञानी हो, परद्रव्य का तो वेदन किसी को भी होता है। और एक समझना है, सुख और दुख दो कौन से भाव है, वेदन भूत भाव है। तो यदि परद्रव्य का वेदन होता तो सुख और दुख होगा, लेकिन उसका तो वेदन है ही नहीं, जो अपने में नहीं है इसका वेदन कभी होता ही नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कोई चाहना ही नहीं है। मुझे तो अपने परिणामों का मैं करता हूं और अपने ही परिणामों का मुझे वेदन भोगता बना है। एक और प्रश्न भी हम समझ सकते हैं, सुख की चाहना किसको होती है, सुख की चाहना किसको होती है, सभी जीव को होती है ना, सभी जीव को होती है ना, पक्का है ना, पक्का है ना, सभी जीव को, सिद्ध भगवान को भी सुख की चाहना होती है, सिद्ध भगवान को चाहना होती है ना सुख की। अरे आपने तो ये नियम बना रहा अभी तक, सभी जीवों को सुख की चाहना होती है, क्या नियम, क्या फिर नियम क्या, दुखी को चाहना होती है। सही माने में जिसको सुख की चाहना नहीं होगी वो या तो जड़ होगा या तो पूर्ण सुखी होगा। जिसको सुख की चाहना नहीं वो क्या होगा, या तो जड़ होगा या तो पूर्ण। ये सिद्ध करता है कि पूर्णता में चाहना नहीं है, पूर्णता मिली फिर चाहना क्यों होती। तो ये मैं कैसा तत्व हूं, पूर्ण तत्व हूं, पूर्ण तत्व में उपयोग जम गया, चाहना ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या करे, ये वस्तु स्वरूप सिद्धांत है, पूर्णता तक ये तुझे प्राप्ति की ओर पुरुषार्थ करके पूर्णता करने की रहेगी, लेकिन एक बार भी पूर्णता प्राप्त हुई कोई भी चाहना इच्छा रहेगी नहीं, तो अधूरास में और विपरीतता में चाहना रहती है। तो यह एक मैं पूर्ण चैतन्य तत्व हूं, उसकी ही मुझे प्राप्ति हो, मुझे और बाह्य विषयों की कुछ भी बाह्य विषय मुझे नहीं चाहिए। एम मानने वाला कैसा है? बादशाह, बादशाह तो समझते हिंदी शब्द है, बादशाह किसे कहते हैं? माने ऐसा राज्य जो होता है ना, इसमें बादशाह माने वो और किसी के अधीन नहीं होता है, स्वयं उसका जो किंग बोलते हैं वो किसी के अधीन नहीं होता है। तो ऐसे ही जिसको चाहना गई है, गुरुदेव जी एक अच्छा शब्द बादशाह का अर्थ करते थे, बादशाह माने क्या गुजराती में, आप हिंदी में भी समझ सकते होंगे, बादशाह माने क्या? राग को बाद कर तो तू सह का सेंसा हो जाएगा। क्या करना है? बात बात समझते हैं, दिल्ली माइनस करना है, राग को क्या करना है, तू बाद हो कर दे उसका तो तू सेंसा, सेंसा माने राजा का भी सम्राट जैसे बोलते तू हो जाए, लेकिन राग के वश इंद्रियों के विषयों के वश तू भिखारी होके चला आ रहा है। कम से कम ऐसी दशा प्राप्त होने पहले ऐसी भावना तो कर सकते हैं कि मुझे कोई चीज की चाहना नहीं, जो सुख चाहिए वो मेरे में परिपूर्ण पराय। किसी को लगे हमें दिखता नहीं है ना, वहां तो बाय पांच इंद्री के विषयों में तो हमें सुख नहीं मिलता है ना, महसूस कर सकते हैं ना, कोई पन डिलीशियस फूड आया तो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? जो जो अच्छा लगता है वही खाने को, यदि इसमें सुख हो तो हम उसकी मर्यादा क्यों करते हैं? हमें सुख चाहिए, उसके साथ दो कंडीशन है, दो कौन सी कंडीशन है? टाइम वाइज परमानेंट सदाए, और क्वांटिटी वाइज पूर्ण, दो तो कंडीशन है ना। अभी एक भी इंद्रिय विषय आप बता दीजिए जो हमारे साथ सदा रहते हो, और उसकी कोई टेबल होगा ना परसेंटेज, जैसे एक लड्डू खाए तो कितना परसेंटेज सुख मिलते हैं? 5%। तो 20 खाएंगे तो कितने मिलेगा? अरे 5 खाने के बाद तो कहेंगे अभी बंद करो, क्यों? तू क्या चाहता था? पूर्ण। तो और भी खाएंगे तो और भी क्या आना चाहिए? सुख आना चाहिए। हम उसकी मर्यादा क्यों कर लेते हैं? ये सही माने में सुख का वेदन है या सुख की कल्पना है, दो को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सही माने में पांच इंद्रिय के विषयों में सुख का वेदन मिलता है या सुख की कल्पना है, कोई उसमें पहले तो गारंटी नहीं है। जिस पर हम सुख का आधारित मानते हैं वो मेरे पास सदा रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसमें कोई सुख सदाकाल मिलता ही रहे ऐसा कोई संभव ही नहीं। जैसे शुगर होते हैं, शुगर शक्कर, इसमें से कितने टाइम के लिए मीठापना मिलता है? कितने? 1 घंटे 2 घंटे? कितने? सदाए? कभी दिन में, रात में, 2 साल के बाद, 4 साल? कभी? अब ऐसे कोई भी पदार्थ है इसमें सदाकाल तो मिलता ही नहीं है, अपनी कल्पना पूरी हो गई तो वहां तो मिलता नहीं है। कोई भी आप चक्षु इंद्रिय का विषय देख लो, उसको बार बार आप जाएंगे, हिल स्टेशन बार जाएंगे, फिर क्या होता है? नहीं है अभी, नहीं है तो नया लो तक नया, क्यों? इसमें यदि सुख मिलता है तो कॉन्स्टेंट निरंतर उसमें आना चाहिए। लेकिन क्या होता है सही माने में, क्या होता है? कल्पना से उसकी ओर हम जाते हैं, कल्पना सुख की है, वेदन आकुलता है, इसलिए राग नया विषय ढूंढेगा। क्या होता है? सुख की कल्पना से हम क्या है? उस विषय की ओर जाते हैं, वास्तव में सुख का वेदन मिलता नहीं है, आकुलता मिलती है तो नया विषय ढूंढते। और तो बात जाने दो, 24 घंटे में हमने कितना विषय बदलते हैं, 24 घंटे में कितना बदलाव लेते हैं विषयों में। किस चाहना से हम उसको अप्रोच किया था? सुख के आखिर में एट द एंड ऑफ डे कितना सुख लेके सो जाते, नहीं तो क्या ले, क्यों सो जाते? थकान लगती है सो जाते, सुख लेके नहीं करते। दूसरे दिन वही क्वेश्चन लेके हम सब प्रारंभ। तो यही है जैन दर्शन के एक ही सुख का विषय आत्मा, कि जिसके आधार से सिद्ध भगवान को सुख कितने समय तक मिलता है, कितने शादी शांत शादी अनंत काल, थकते नहीं, सुख का टू मच लग्जरी से थकान नहीं लगती, टू मच लग्जरी के थकान तो लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर, नहीं सिद्ध भगवान नहीं जाते। यही फर्क है हमारी कल्पना के विषय है और सिद्ध भगवान को सही अनाकुल आनंद का वेदन है। आनंद इसको कहे जिसके पीछे आकुलता न हो, सही आनंद जिसको कहे कि जिसका वेदन में कभी थकान न लगे, जहां बोझा सा न लगे, उसका नाम ही सही माने में सुख है। श्रीमद जी ने तो 16 वर्ष की उम्र में जो अमूल्य तत्व है ना, वो पुण्य पुंज प्रपंच से आता है ना हिंदी में आप, इसमें एक अच्छा सिद्धांत लिखा है। क्या सिद्धांत लिखा है? ये त्याग वा सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं। क्या लिखा है सिद्धांत? इस सिद्धांत को तो छोड़ देना, त्याग करना। कौन सा सिद्धांत? जिसके पश्चात दुख, आखिर में दुख आ जाए, इनिशियली सुख की कल्पना लगे, एट द एंड ऑफ डे क्या लगता है? आकुलता। तो समझ लेना कि पहले मैंने जो माना था वो वास्तव सुख नहीं था, दुख था वो। ये त्याग वा सिद्धांत के पश्चात, पश्चात में आफ्टरवर्ड्स, पश्चात दुख ते सुख नहीं है, सुख की कल्पना थी। लेकिन क्या करे, इतने सोचने का भी समय नहीं मिलता है, मन मरवानी फुर्सत नहीं। मैं मुंबई जीव प्रवृत्तिमय जीवन हो या एक पची एक अनादि काल की आकुलता से हटकर शादी अनंत काल शांति चाहिए तो निवृत्ति भी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही विकल्पों के जाल में उलझन में फंसते जा रहे हैं। मैं कौन हूं उस तत्व का भी सोचने का हमें समय नहीं मिलता है, तो अनुभव का तो पुरुषार्थ कभी करेंगे। विकल्पों की जाली है नहीं, एक विषय आया नहीं तो तभी दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, पर क्या करें ऐसी परिस्थिति। सब लोग ऐसे ही जीवन जीते तो हम भी जीवन जीते हैं। तुझे ऐसे लोग ही दिखे, अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, उसको सोचता क्यों नहीं है? कम से कम चक्रवर्ती से ज्यादा हमारे पास वैभव हो गए ना, इसलिए वी आर सो मच बिजी विद ने, ऐसे ही ना। उनके पास तो कितना थे, सिर्फ कितना थे तो? नहीं, छखंडी थे ना, हमारे तो बुद्ध है ना, हमारे पास तो कम से कम वे भी इतने विषयों के बीच में रहते भी जैसे जल में कमलिनी का पत्र अलिप्त रहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में अंत अंत में वो जो भी संयोग मिला हो हमारी मेहनत नहीं है, पूर्व के उदयों का परिणामों के उदयों का फल है। हम वर्तमान ऐसे मानते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं इसलिए मुझे ये मिलता है। कभी भी वर्तमान परिणाम और वर्तमान संयोग का कंपैरिजन मत करना। जो संयोग मिला है वो भूतकाल के भावों का फल है, और वर्तमान जो परिणाम करते है उसका भावी में फल मिलने वाला। तो यहां फिर से कि जो परद्रव्य की चाहना करता है वो भिखारी है, और जिसको अपने आत्मा की ही प्राप्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसी भावना वो क्या है, भाषा। आत्मा अचिंत्य शक्तियों का धनी माने स्वामी है। कौन आत्मा? कौन आत्मा? बहिरात्मा या परमात्मा या अंतरात्मा? कौन आत्मा? कितने प्रकार के हैं? आत्मा है ही नहीं कि है ही तो सही ना, आत्मा है इतना तो हम मानते हैं, हम नास्तिक नहीं है, आत्मा है तो सही। लेकिन तो आत्मा के प्रकार कितने हैं? कितने हैं? 14 गुणस्थान वाला 14 है, जीवस्थान, जीवस्थान कितने आते हैं? जीव समास बोलते हैं ना, कितने प्रकार है? चौथ प्रकार है ना जीवस्थान, है ना इसमें नहीं, एक इंद्रिय बे इंद्रिय, इसमें फिर संगनी असंगनी और एक इंद्रिय में भी दो, इसमें फिर पर्याप्ति और अपर्याप्ति, इसके प्रकार कितने प्रकार है जीव के, 14 प्रकार है ना। सर्व जीव सिद्ध समय ऐसा तो नहीं है ना, ये भी है और ये भी है, यही प्रकार है। पर्याय दृष्टि से देखे तो विविधता देखे, और स्वभाव दृष्टि से देखे तो कैसा हूं, मैं एक रूप ही हूं सदा। तो ऐसा आत्मा क्या है, अचिंत्य शक्ति। समय सार के कलश में क्या आता है आत्मा के लिए, अचिंत्य चिंतामणि स्वयमेव देव। कैसा है, मैं कैसा हूं, अचिंत्य चैतन्य चिंतामणि में रत्न हूं। बाहर का जो चिंतामणि आता है वो कैसा है, जड़ रत्न है, और मैं कैसा हूं, अचिंत्य चैतन्य चिंतामणि। फर्क क्या हुआ, ये बार में ऐसा है वो जैसा है ना, कल्पना नहीं है, चिंतामणि रत्न जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसा रत्न होता है, उसमें जो भी चिंतवे वो मिलता है, मिलता है ना, जो भी उसमें चिंतवे वो मिलता है ना, नहीं, इसलिए तो उसका नाम रखा है चिंतामणि रखा है। वो हाथ में रख के हम मोक्ष की चिंता ना करें तो मिल जाएगा ना, तो फिर क्या फायदा, वो हम चिंतामणि। चिंतवा किसकी मर्यादा है, संयोग, और संयोग में अपना पुण्य होगा, तो ऐसा मत समझना चिंतामणि सब कुछ में, लेकिन उसमें भी एक पराधीनता है। क्या पराधीनता है, मांगना पड़ता है, और मैं कैसा हूं, अचिंत्य हूं, है ना, अचिंत्य, कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा चैतन्य चिंतामणि महारत्न हूं कि जिसमें कोई मांगना, इसमें कोई विकल्प करना पड़े की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ही अपने चैतन्य चिंतामणि आत्मा का अवलंबन ले, तुझे शुद्धता की, वितरागता की, अतिंद्रिय आनंद की प्रगटता होगी। और ऐसा में आत्मा अचिंत्य शक्तियों से, फिर से अचिंत्य, अचिंत्य माने विकल्प से भी परे। इतने कितने संख्या से कितने गुण है मेरे में, कितने हैं, नहीं है ही नहीं कि है, अनंत है, कितने अनंत, वही बात है। बाहर में कोई डॉक्टर कहेंगे दवा ले लो मिट जाएगा, वहां विश्वास आता है, अनित्यता का विश्वास करते हैं, निश्चितता का विश्वास नहीं करते। डॉक्टर जरूरी नहीं दवा दिया हो हम निरोगी हो जाएंगे, और फिर भी वहां क्या होते हैं, विश्वास रख के उपाय करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो कम से कम हमें पंच परमेष्ठी पे, देव शास्त्र गुरु पे क्या विश्वास नहीं है, हम पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुमान करते हैं, तो फिर हमें क्यों विश्वास, सही माने में हमें ये प्रयत्न ही नहीं करते, इतने प्रमाद में बैठे, और इतना मान लेते तो आज हर रोज का क्या होता है, टाइम स्लॉट देते हैं सबका, जैसा होता है ना बिजनेस में 7-8 आवर्स होते हैं, इसे ऐसे हमने आत्महित के लिए कितना टाइम अलॉट किया है, कितना कितना 24 घंटे में से कितना अलॉट किया है, एक भी नहीं। ये तो जबरदस्ती आना पड़ता है सबके, समाज में रहना है तो लोग लाश से आते हैं, ऐसे तो छुट्टी मिले तो घर बैठे कर लेता हूं। अच्छा है घर बैठे तो हॉलीडे ले मना लेना, वहां तो जाते हैं, घर बैठे मनाना है सब कुछ, तो फिर जीवन में रुचि वेदन तक ले जाएगा। यदि खरी माने में आत्मा की रुचि लगी है तो कहां ले जाएगा, वेदन तक ले जाएगा। भूख भूख लगी है, किचन में जाते हैं, भोजन को देखते हैं और भूख मिट जाती है, नहीं मिटती। अरे देखा हमने सब कुछ, देखा बहुत भोजन अच्छा सब बनाया है, क्या होगा, क्या चाहिए, रुचि लगी है तो कहां तक पहुंचते हैं, वेदन तक पहुंचते हैं। तो यहां यदि आत्मा की रुचि लगी तो वहां तक, वेदन तक नहीं पहुंचे, तो समझना मुझे सही माने में आत्मा की रुचि लगी नहीं है। तो मैं कैसा, अचिंत्य शक्ति, शक्ति कहो, गुण कहो, सामर्थ्य कहो, स्वभाव कहो, अचिंत्य, जो विकल्पों में भी न आए, वाणी में भी न आए, इतने गुण आकाश के प्रदेश है, अलोक आकाश मिला के, इससे भी अनंत गुणे गुण मेरे में, और फिर भी हमें उसकी महिमा नहीं ले। और अचिंत्य क्या क्या कि ऐसे अनंत शक्तिवान आत्मा का यदि हम सही माने में स्वीकार करें तो विकल्प छूटे बिना है क्या? विकल्प में सामर्थ्य नहीं कि ऐसा आनंद गुण से भरा अपना चैतन्य तत्व का वो स्वीकार पाए। तो ऐसा अचिंत्य शक्तियों का मैं स्वामी हूं। जिस क्षण में जागो उसी क्षण में आनंद स्वरूप जागती ज्योत अनुभव में आ सकती है। फिर से क्या शब्द किया आखिर में? आ सकती है, ऐसी चैतन्य ज्योत अनुभव में आ सकती है। और परद्रव्य को अपना करना नहीं, अनादि काल से पुद्गल में एकत्व करते आ रहे हैं। कितने परमाणु को हमने अपना बना दिया? बना कम से कम थोड़े थे, अनादि से करते हैं ना प्रयत्न, तो कितना सक्सेस हुए हम? कितना परसेंटेज? 1% में। फिर भी थकते नहीं है, अशक्य को शक्य बनाने में अनंत काल गए हैं, और जो संभव है शक्य है वो करने के लिए सही रूप से हम पुरुषार्थ नहीं करते। पूज्य गुरुदेव जी कहते ये अनुभव हो सकता है कौन से काल में, कौन से क्षेत्र में, किस जीव को, किस जीव को, किस क्षेत्र में, किस काल में अनुभव हो सकता है? अभी हमको हो सकता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद के वश हम रहे। इसलिए सही माने में संभव है, सही हो सकता है, लेकिन परिणमन होता नहीं है। तो अनुभव में ये आनंद स्वरूप, देखिए दो आत्मा के साथ में दो शब्द बहुत आते होंगे, जैसे आत्मा है ना उसके लिए एक शब्द क्या है? चिदानंद। दो शब्द ना, चिदानंद, चिद में क्या आता है? ज्ञान और आनंद, दो शब्द क्यों साथ में होते हैं? अविनाभावी, एक और अविनाभावी, ज्ञान और आनंद दोनों कैसे है? अविना, जहां जहां सम्यक ज्ञान है वहां नियम से आनंद होता है, और जहां अज्ञानता है वहां नियम से आकुलता दुख होता है। एक और भी, ज्ञान और आनंद के बीच में एक रिलेशनशिप क्या है? ज्ञान मेरा साधन है और आनंद मेरा फल है। क्या है? हमें फल चाहिए ना, मेरा प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? आनंद है। उसका साधन क्या है? ज्ञान है। लेकिन सही ज्ञान का प्रयोग बहिर्मुखता में, बाह्य विषयों के ज्ञान की वृद्धि चाहते हैं, लेकिन जिससे हमें आनंद का वेदन हो उसकी ओर हम ले जाते नहीं। बाह्य में पाप के निमित्त रूप से हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं। पाप करने के लिए भी ज्ञान का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? चोरी कैसे करनी चाहिए, माया चाहिए के, उसमें भी ज्ञान का है, लेकिन उससे क्या होता है? प्रयोजन की सिद्धि आनंद की नहीं होगी, वो तो अज्ञानता है, बहिर्मुखता है। या तो आत्मा की सन्मुख में, तो जिस क्षण में जागृत हो और जिस क्षण में जागृत छेढ़ाला में दौलत राम जी मोह महामद पियो अनादि, सबको तो है छेढ़ाला तो आते हैं ना, कब से हम निंद्रा में मोह भाव में प्रमाद में पड़े हैं? अनादि से। किस वजह से? मो महामद पियो अनादि, इससे फल क्या हुआ? भूल आपको भरमतवाद। सही माने में हमें अपने अज्ञान का खेद क्यों नहीं होता है? इतना अनादि काल से दुखी हो आ रहे और हम कल्पना से सुख क्यों कर रहे हो? कि दौलत कोई भी हमारे ले तो ये बात आएगी कि हम अनादि से परवश में, विषयों के वश में, बहिर्मुखता में, दुख में ही हम पड़े हैं। अहियाँ पूज्य गुरुदेव से अभी जिस क्षण तो जागेगा शब्द है एक, उससे भी एक अच्छा बात है, अनादि काल का अज्ञान मिटाने के लिए कम से कम कितना काल चाहिए, कितना चाहिए? अनादि का है, आजकल का नहीं है, अनादि का है ना, तो उसको टालने के लिए कितना अनंत काल चाहिए, नहीं चाहिए, कितना चाहिए एक समय में? इसलिए तो हम आराम से बैठे हैं, कभी भी कर लेंगे क्या है? इतना सामर्थ्य भरा है। कोई एक मान लो कमरे में बहुत सालों भर से अंधकार हो, अंश मात्र भी एक उजाला न हो, उजाला करने के लिए कितना घंटा लगेगा, कितना समय लगेगा? लाइट जलाना में जितना समय लगे, इससे भी कम एक समय की जागृति, स्वभाव सन्मुखता की एक समय की जागृति अनंत काल के दोष को मिटा देगी। ये इससे और सरल मार्ग कौन होगा, इससे और सरल विधि कौन सी होगी? लेकिन अपने को अपना सामर्थ्य का ही विश्वास नहीं है। तो यह गुरुदेव से हमारे विश्व, हमारे अंदर में से विश्वास जागृत कर कि जिस क्षण से तू जाग जाएगा उसी क्षण में, समय सार में भी ये बात आती है, हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं, वो किसको पूछ के पक्का करना है? किसी को तो पूछना ही पड़ेगा ना? नहीं नहीं, हमें पता लग जाता है, पूछना पड़ता है ना किसी ज्ञानी के पास, केवली के पास, मनोपरिज्ञानी, किसी के पास तो पूछना ही पड़ेगा, कन्फर्म तो करना पड़ेगा ना? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? निजरा अधिकार की 206 नंबर की गाथा में अमृतचंदाचार्य कि उस सुख को तू स्वयं अनुभव करेगा, दूसरे को मत पूछ। क्या शब्द लिखा है? दूसरे को मत पूछ। क्यों? यदि दूसरे को पूछने को गया तो समझ लेना तुझे अनुभव नहीं है। अनुभव होता है वो पूछने को जाता नहीं, और जो जाता है उसको अनुभव होता ही नहीं है। मैंने अग्नि में हाथ डाला, वो किसको पूछने को जाऊंगा? नहीं, दूसरे को पूछने की आवश्यकता है? पूछू तो पड़े ना, बीजा हाथ अग्निमा नायक हो तो किम खबर पड़ से? हाँ, कौन है बीजा ने था से ना, पता नहीं था से। अनुभव किसी को दूसरे को पूछने योग्य नहीं है, स्वयं का वेदन स्वयं को होता है। तो यहाँ के तू जिस समय जागृत होगा उसी क्षण आनंद स्वरूप जागृत ज्योत ऐसा चैतन्य का तुझे अनुभव हो सकेगा। 206 नंबर की गाथा टीका का आखिरी का शब्द, दूसरे को मत पूछ, ऐसे करके उसमें भी कुंदकुंद आचार्य देव ने 206 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर हमें विधि बताई। प्रथम क्या है? आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने, आनाति बन तू तृप्त तुझने, सुख्य उत्तम सुख्य अनुपम तसे। तीन प्रकार के बेटा, पहले क्या बताया? आमा सदा प्रीति, प्रीति माने रुचि का। फिर दूसरा शब्द आमा सदा संतुष्ट। फिर से जहां पहले चलो मान लो तृषा लगी है, हमें तृषा लगे तो हमारा पहला प्रयत्न कौन सा होगा? तृषा मिटाने के लिए पहले प्रयत्न क्या करेंगे? पानी के स्थान तक पहुंचेंगे, और पानी के स्थान तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे? पानी निकाल के पिएंगे। एक प्रकार ही होता है ना, ऐसे ही, ऐसे ही पहले क्या करना है? पहले आत्मा की, मुझे आत्मा चाहिए, ऐसे आत्मा की क्या करनी? प्रीति, रुचि, उसका ही रस, उसका ही प्रेम। फिर दूसरा स्टेप क्या आ गया? आत्मा सुख तुझे चाहिए, तो आत्मा सुख स्वरूप आत्मा की रुचि हुई, तुझे सुख का स्थान मिल गया तो क्या होगा? संतुष्ट हो जा, अभी कहीं ढूंढने मत जा। तृषा लगी, हम प्याव, प्याव बोलते हैं हिंदी में, वहीं तक पहुंच गए या तो कुएं के पास पहुंच गए, एक क्या कार्य होगा? अभी कहीं ढूंढने को नहीं जाएंगे, अभी हमें इतना क्या हो गई? संतुष्टि क्या हो जाएगी? कि इसमें से ही मुझे पानी मिलने वाला है। तब पहले सुख की चाहना, उसके बाद सुख की स्थान, और तीसरा क्या है, ए नाति बनतु तृप्त। तृप्त माने क्या लेना है, वो सुख के स्थान में पानी निकाल के पी के तू तृप्ति हो जा। पहले प्रीति, प्रीति के बाद संतुष्टि, और संतुष्टि के बाद तृप्ति। ए प्रकार करेगा तो तभी जो आनंद का वेदन आएगा, और वही निजरा का ये क्या है, प्रसिद्धि। सुख का वेदन मोक्ष मार्ग की प्रगटता का सूचक है। तो यहां ये कहते हैं कि ऐसी अनुभूति तू कर सकता है। चलो 44 नंबर का बोल। अंतरंग के भाव में से, उसका अर्थ उंडाण गहराई में से भावना उठे तो मार्ग सरल हो जाए। ये पहले क्या करना है, कभी प्रश्न होता है ना, प्रथम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रथम आत्महित करना है, रत्नत्रय प्राप्त करना है, तो प्रथम क्या करना, प्रथम का थोड़ा मंदिर में आना शुरू करना है, थोड़ा अभिषेक पूजन में, वो वही पहले करना है ना, नहीं तो क्या, पहले क्या करना, कुछ तो कुछ शुरुआत तो कर, कहीं प्रारंभ भी स्टार्ट विद समवेयर ना, रुचि तो है तभी तो यहां तक आ गया, वो तो स्टेज पूरा हो गया। इतना समझ लेना, प्रथम शब्द आया उसका अर्थ क्या है, प्रथम प्रथम पहले उसको आप क्या कहें, उसका मीनिंग क्या, प्रथम माने जो भूतकाल में कहीं न किया उसका नाम ही प्रथम होगा। प्रथम ऐसा ही है ना, भूतकाल में कहीं किया वो तो रिपीट हुआ फिर, तो प्रथम क्या करना है कि प्रथम कहीं भी भूतकाल में शुभ और अशुभ भाव करते आए हैं वो कोई प्रथम है ही नहीं। अभी कितनी बार हमें मिथ्या दृष्टि के योग शुभ और अशुभ भाव कितनी बार कर चुके हैं, अनंत बार कर चुके, फिर भी एक आग्रह रह जाता है इतना तो करना चाहिए ना, तो सही माने में वो प्रथम नहीं है, वो तो अनंत बार कर जाए। इसलिए एक अच्छा है, प्रथम क्या करना है, 17-18 गाथा में लेवे तो उसके लिए प्रथम क्या है, सोचे मैं वाक्य सोचे, मोक्षार्थी पुरुषे प्रथम आत्मा को ने जानवो, प्रथम आत्मा को जानना ये प्रथम कार्य। ऐसे ही मोक्ष अधिकार में एक प्रसंग हुआ है, आपको शायद पता होगा, सोनगढ़ में गुरुदेव की उपस्थिति में जो प्रवचन मंडप है ना, प्रवचन मंडप बड़ा हॉल है ना, उसका उद्घाटन हुआ था 2003 के साल में। फिर वहां एक कुछ आयोजन किया गया था, कुछ विद्वत परिषद, विद्वत परिषद समझ, तभी माने जो सिद्धांत शास्त्री आदि सभी बड़े विद्वान थे ना, उसका एक परिषद होती थी, तो वहां परिषद बनाई गई थी, पूरा भारतभर से 32 विद्वान बड़े आए थे। तभी गुरुदेव जी के प्रवचन चलते थे, इसमें एक प्रश्न हुआ कभी कि प्रथम क्या करना चाहिए, आत्महित के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, देखिए गुरुदेव जी का ऐसा क्षोभसम था और ऐसे तुरंत ही उन्होंने निकाल के दिया। देखो समय सार में भी आचार्य देव ने 17-18 गाथा तो है, इसमें भी ये लिया है मोक्ष अधिकार 295 गाथा, मोक्ष अधिकार इसमें अमृतचंद्राचार्य देव के ही शब्द है। तो पहले आत्मा हित के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा और बंध के प्रथम तो उनके नियत स्व लक्षणों से, लक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही चेतना। पेज नंबर 433, पेज नंबर 433 टीका की पहली लाइन है, आत्मा और बंध को प्रथम, देखो शब्द लिया ना, लेकिन इसके पहले क्या करना, ये बहुत कठिन लगता है, प्रथम आत्मा और बंध को लक्षण जान के उनको द्विधा करना वो क्या लगता है कठिन, तो इसके पहले क्या करना, इस नहीं कठिन नहीं, उसके पहले एक स्टेप पहले हम बता दो, इसके पहले तत्व विचार करना, इसके पहले क्या करना क्या करना, हमें हमारे अभिप्राय तक जब भी उत्तर नहीं मिलेगा समाधान हम पूछते जाएंगे। और एक बार कह दिया शुभ राग करना, फिर आगे नहीं पूछेंगे, इतना पक्ष पड़े हैं हमारे यहाँ। नहीं, हमें हम चाहते हैं, एक आश्चर्य तो यह है, अज्ञानी जीव अज्ञान अभिप्राय ज्ञानी पास जाता है। वे ज्ञानी और हम अज्ञानी क्यों, अभिप्राय भेद है, फिर भी हम क्या चाहते हैं, मैं जो मानता हूं मेरा जो अभिप्राय वैसा ही वहां समाधान मिले, तो फर्क क्या रहेगा हमारे और उसके बीच में। इसलिए अमृत चंदा संस्कृत है शब्द, संस्कृत तो पढ़े होंगे ना थोड़ा, क्या है उसमें ऊपर पेज में दिखता है प्रथम के लिए कौन सा शब्द लिखा है, आत्मबंधो ही मिलता है शब्द, फिर क्या है आगे, तावत नियत स्व लक्षण विज्ञानेन, है ना, तावत, तावत का अर्थ है प्रथम। तो पहले क्या करना है, सर्वप्रथम ये करना है, ये कौन सा अधिकार है, मोक्ष अधिकार, इसलिए कौन लिया है, बंध लिया है, संवर अधिकार होगा तो आश्रव आएगा, जिस जिस प्रकार से है, जीव पहला है तो जीव अजीव अधिकार वेदनान करना है। तो प्रथम गुरुदेव सिंह ने तुरंत निकालते दिया कि देखो ये अमृत चंद्राचार्य देव समाचार में क्या क्या शास्त्र में परमागम में तो सभी लिखा है, लेकिन मूलभूत क्या कमी क्या रह गई है, अभ्यास करते नहीं है। और यदि पढ़ते हैं, अभ्यास नहीं पढ़ते हैं तो अपना अभिप्राय रख के पढ़ते हैं, सही माने में एटलीस्ट लिखने वाले के प्रति हमारी होनेस्टी प्रामाणिकता क्या होगी, उन्होंने जिस अभिप्राय से लिखा है वो अभिप्राय ग्रहण करना, वही उनके प्रति आचार्य देव के प्रति सही उनका श्रद्धा माने पूज्यता सम्मानता, उनके अभिप्राय के अनुसार उस शब्दों का अर्थ करें, हमें जैसा लगे ऐसा करें वो कोई उनकी तो अवहेलना की हमने किए। तो यहां फिर से गुरुदेव जी का वाक्य पहले 44 नंबर के कि अंतर भाव में से, जैसे पूज्य बेंसी के वचनामृत में इसके लिए कौन सा नंबर का बोले, 21 नंबर का बोले, उसमें सच्ची भावना की व्याख्या लिखी है उन्होंने। सच्ची भावना किसे कहते हैं, चैतन्यनी चैतन्य माथी उगली भावना, किसकी, चैतन्य की, चैतन्य मास है ये अस्ति, और नास्ति में क्या लिखा है, राग द्वेष में से नहीं उत्पन्न हुए, हम जो भी विकल्प जो भी करते वो किसमें है, इसमें साथ में क्या है, राग है, और दूसरे के प्रतिकूलता के माने उनके प्रति द्वेष है, हमें सही ये अंतरंग में से चैतन्य में से, तो अंतर के भाव में से, सिर्फ विकल्प नहीं कोई शब्द नहीं, अंतरंग के भाव में से माने अंतरंग के गहराई में से भावना उठे तो, भावना जागृत हो तो मार्ग सरल ही है, मार्ग सरल ही दिखेगा, मार्ग की अवश्य प्राप्ति। लेकिन ये क्या होता है, गहराई, गहराई माने क्या होता है आत्मा में, नहीं गहराई अपने गुजराती में कहें ऊंडाण, तो द्रवनी अंदर ऊपर ऊपर शू हो ना अंदर शू हो, बे हो ने त्यारे तो बे शब्द वाय प्राय, नहीं नहीं ऐसे ऊपर ऊपर लेयर लेयर ऊपर और गहराई दो है ना, क्या है ऊपर नौ कर्म ऊपर ऊपर है उसके, क्या है एक शब्द प्रयोग तो ऐसे बहुत आते हैं ना, तो तल में जा तो गहराई में, तो मैं कहता हूं आप सभी हम समझ कि क्या उसका अर्थ क्या लेना, कुछ ऊपर ऊपर है और कुछ ऐसे नहीं, हाँ गंभीरता से नहीं, वस्तु मा तो उंडाण मा जाए, द्रव मा उंडाण मा जा, द्रव नित्य कहीं ऊपर नीचे हो ही नहीं, जैसे एक कोई भी द्रव के अंदर उसके थोड़े से हिस्से में क्या रहता है, एक पदार्थ द्रव्य है छह द्रव्य में से उसके थोड़े से हिस्से में और सदा रहे ऐसा क्या है, थोड़े से हिस्से में सदा रहे वैसा क्या है, और थोड़े से हिस्से में एक समय के लिए उसका नाम क्या है, थोड़े से हिस्से में एक समय के लिए, और थोड़े से हिस्से में सरदार रहने वाला कौन सा होता है? पर्याय, पर्याय थोड़े से हिस्से में एक समय के लिए होती, वो भी पुण्य में। लेकिन हम तो समझते पर्याय ऊपर ऊपर होती है और गुण द्रव्य अंदर में होता है, ध्रुव अंदर में होता है। देखिए क्षेत्र की भिन्नता से कथन है, वहां लक्षण भिन्नता है, क्षेत्र का ऊपर नीचे नहीं होता है। क्या है? लक्षण की भिन्नता बताना है, लेकिन बताने के लिए बाहर में स्थल दृष्टांत किसके लिए होता है? क्षेत्र ऊपर वगैरह, इसमें जैसे गुण की व्याख्या है द्रव के पूरे हिस्से में और सदा जो रहे उसका नाम क्या है? गुण है। और द्रव्य के पूरे हिस्से में एक समय के लिए रहे उसका नाम पर्याय है। लेकिन थोड़े हिस्से में कुछ हो और सदा हो ऐसा कोई, तो यहां तो कथन पद्धति में समझाने के लिए गहराई में इसका अर्थ है कि तेरा उपयोग बाहर भटक रहा है, उसको अपने स्वभाव में लीन कर एकाकार उसके सन्मुख कर तो तुझे सरल मार्ग की प्राप्ति हुए बिना। लेकिन उसका विस्तार हो
सहजानंदेशो स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदेशो स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंद।